میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یا ذکر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس وقت اسٹریچ فیلڈ برمنگھم کے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک راستے میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ کہتے ہیں، I carried my mother on my shoulders for 6 miles۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں۔ ایم آئی فری فرام دا رائٹس آف مائی مدر؟ کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ماں باپ ہیں جن کے بارے میں ہمیں قرآن میں، حدیث میں بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ ماں جو بس ماں ماں ہوتی ہے، لفظ ماں کہتے ہیں منہ میں مٹھاس سے آ جاتی ہے۔ مائی مدر، ہم کہتے ہیں نا شی از مائی مدر، ماں کہتے ہیں تو ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، یہ میری ماں ہے۔ ماں خود ایک بڑا میٹھا، جب اس کو کسی بھی دنیا کی لینگویج میں آپ کہہ لیں اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ ماں کہہ لیں، موم کہہ لیں، جو بھی ہمارے عموماً چل رہا ہوتا ہے، میری امی جان ہے، ڈائریکٹلی امی کے ساتھ کیا لگ جاتا ہے، جان لگ جاتا ہے۔ تو جیسے ہم ماں کا نام لیتے ہیں تو ایک شفقت اور ایک نرمی اور ایک پیار اور محبت کی مٹھاس منہ میں آ جاتی ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں ہی از مائی فادر، مائی فادر یعنی میرے والد ہیں، یہ میرے ابو ہیں، تو یہ ایک ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیے ہیں، یہ مطلب میرا سب کچھ ہے۔ تو والدین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو 7 حج کے کندھے پر لے کر کرائے۔ کتنے حج؟ 7 حج کندھے پر لے کر کرائے، یعنی عرفات، مینا، مزدلفہ وغیرہ کندھے پر لے کر گیا۔ 7ویں حج میں خیال آیا کہ شاید اب میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہو۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس شخص، ایک رات سخت سردی تھی، ٹھنڈ کی رات تھی، تو چھوٹا بچہ تھا اپنی ماں کے پاس سو رہا تھا کہ تو نے بستر خراب کر دیا، نجاست۔ ماں نے رات کو اٹھ کر بستر دھویا، غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، इसीलिए बिस्तर पर खुद सोई यानी गीली जगह पर, धोने के बाद गीली जगह पर खुद सोई और तुझे रात भर अपने सीने पर रखा, अभी तो उसकी एक रात का हक भी अदा नहीं कर सका। ये माँ होती है जो दिन रात तकलीफ उठाते हैं। आपके घर में छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन लाइक छोटे छोटे 1.5 साल 6 महीने के, इनके साथ देखा कभी किस तरह माँ बाप चल रहे होते हैं? अपने तो नहीं चल सकते, माँ को ले लेके दौड़ रही होती है, माँ भाग रही होती है, हमारे लिए खाना बना रही होती है, हमारे लिए काम कर रही होती है, वो वहां से रो रहा होता है, उसको उठा रही होती है, उसको चुप करा रही होती है, बल्कि हम अगर वो हमारे पास आता है तो हम भी उसको दे देते हैं, माँ संभालेगी, माँ संभालेगी। हमारी इस एज में भी ये मंजर मौजूद है कि हम जब छोटे थे तो माँ ने हमको कैसे पाला था, वाले साहब किस तरह मेहनत क्या करते थे। तो अल्लाह पाक हम सबको अपनी अम्मी और अबू के एहसानात को समझने की तौफीक अता फरमाए, इनकी खिदमत करने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए, और इनके साथ नरमी इख्तियार करने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि बंदा कुछ भी कर ले प्यारे इस्लामी भाइयों, वो अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकता। माँ बाप के साथ मोहब्बत करें, और माँ बाप की ताजीम करें, ताजीम यू नो ताजीम, वो आए तो आप खड़े हो जाएं, जैसे ही माँ बाप आते हैं, वालिदैन आते हैं, पेरेंट्स जब भी आएंगे आप क्या करें? खड़े हो जाएं। अच्छा, आप जहां बैठे हैं ऑफर करें प्लीज यू सीट हियर, अब उनके सामने खड़े रहें, उनको पानी पेश करें, अम्मी अबू पानी, और उनकी बात माने। अगर अल्लाह और के रसूल के हुक्म के खिलाफ कोई बात करते तो नहीं माननी होती, अदरवाइज उनकी बात माने, कोई चीज इनको लाकर दें, कुछ चीज इनको पेश करें, कुछ चीज इनको खिलाएं। और अगर बेबी के वो 50+ 55+ 60+ हैं या इससे ज्यादा हैं, तो मेरी आपसे दरखास्त है, या चले माँ बाप तो बड़े होते हैं, बच्चों से बच्चे माँ बाप तो छोटे होते ही नहीं है, तो जब भी कोई मौका मिले अपने हाथों से अपनी अम्मी अबू को निवाला खिलाएं। मना करें तो कहें कि जिस तरह आप बचपन में हमें खिलाते थे, आज हमको मौका मिला हम भी आपको खिलाएंगे। इससे मिलती है माँ बाप की दुआ, जब माँ बाप खुश होते हैं ना, फिर इंसान की कामयाबी को और उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। जिस दुनिया का कामयाब तरीन शख्स आप उसको ले लें, हर वो मुसलमान जिसको कामयाबी नसीब हुई, आप उससे बात करेंगे तो उसके पीछे उसके माँ बाप की दुआएं जरूर मिलेंगी। ये हो ही नहीं सकता कि माँ बाप नाराज हों और इंसान कामयाब हो, ये नहीं हो सकता। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, इनके एहसानात को समझने की, इनके एहसानात को मानने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारा अंदाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में जलवा फरमाते हैं, जैसे सितारों में चांद होता है। अचानक एक बाप पर्दा खातून हाजिर होती हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अपनी चादर बिछा देते हैं। देखने वाले हैरान थे कि ये कौन खुशनसीब बीवी है। तो मालूम जब हुई तो फरमाया कि ये मेरी माँ हलीमा सादिया है, दूध माँ, आपने दूध क्या था हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, ये अबू दाऊद शरीफ हदीस सुनाई मैंने, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रजाई वालिदा, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे चाहने वाले, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, आका से मोहब्बत, आका से प्यार, अल्लाह का शुक्र है हम सब करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा को कभी अदा भी करें कि माँ आए, ये तो आपकी रजाई वालिदा थी, दूध वालिदा थी, है आपने इनका दूध पिया था, और इनकी किस कदर आपने इन पर करम नवाजी फरमाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जब वो हाजिर होती हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए अपनी चादर बिछा देते हैं। क्या कभी हमें याद पड़ता है कि हमने अपने माँ बाप के साथ ऐसा कोई नेक और उम्दा सुलूक किया हो? नहीं किया तो प्यारे भाइयों गौर करें कि हमको करना चाहिए या नहीं, और अगर करना ही चाहिए और वाकई करना चाहिए तो आज से ही शुरू करते हैं। चाहे आप मदनी चैनल पर हैं, ख्वाह आप सोशल मीडिया पर हैं, ख्वाह यहाँ फिदान मदीना में बयान सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में है जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। एक हदीस में है जिसने अपनी वालिदा के पांव चूमे तो ऐसा जैसे उसने जन्नत की चौखट को चूमा। शायद ही कोई अलग ही हदीस हम जमाने से सालों से तो शायद आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, शायद ही कोई हो जिसने अपनी मां के कदमों को चूमा, शायद ही कोई। बाज ममालिक में हो सकता है कि एक तादाद होगी, लेकिन मैंने बाज ममालिक के अंदर देखा है कि वालिदैन के साथ वो कल्चर है ही नहीं। एक हमारे एक नेशनल वैल्यूज भी हैं, हमारे एक इस्लामी वैल्यूज भी हैं। अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक वैल्यूज आर इग्नोर्ड इन सोसाइटी दिस डेज। एज अ रिजल्ट आवर मॉरल हैव बीन करप्टेड। यानी माँ बाप के साथ ही जब हमारे इस्लामी वैल्यूज और हमारे ये इस तरह की चीजें ना रहे तो किसके साथ रहेंगे? तो शायद ही कोई हो कि जो अपने वालिदैन के साथ इस तरह उसने सुलूक करता हो, वालिदैन की इसने जैसे मैंने कहा माँ की कदमों को चूमा हो। अब तो खैर कितनों के तो माँ बाप दुनिया से चले गए, लेकिन अगर हैं तो इनकी कदर करिए, इनके हाथ चूमिए, इनकी दस्त बोसी कीजिए, इनकी खदमत कीजिए, इनको कुछ प्यार और मोहब्बत की बातें बताएं। हत्ता कि जब इनके साथ आप बैठे तो इनसे बातें करें। अब हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि जब वालिदैन भी आते हैं तो अपने मोबाइल फोन पे बिजी रहते हैं और बिल्कुल जवाब ही नहीं देते। एक माँ अपने औलाद को बच्चों को बुला रही थी, एक माँ अपने बच्चों को बुला रही थी, बच्चों ने जवाब नहीं दिया, बच्चे ने जवाब नहीं दिया, माँ नाराज हुई और उसको बद्दुआ दी, उसी वक्त गूंगा हो गया। माँ की दुआ यूं कबूल होती है, उसी वक्त गूंगा हो गया। अब हमारे यहाँ ये माँ बुलाती है बहुत ज्यादा, हम क्या कर दिया कमी, फिर आवाज देंगे यस कमिंग। अच्छा कर क्या रहे हो भाई? कमिंग कमिंग, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर कमिंग? तो पता चले कि ये मिस्टर कमिंग जो है ना वो मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, अभी वो गेम खेल रहे हैं। कमिंग, अच्छा इसमें मिस हो गया कुछ, और अब वो कुछ बोलेगा उल्टा सीधा, फिर कहेगा क्या है, व्हाई आर यू शाउटिंग, डायरेक्टली शाउटिंग। माँ बोले कुछ नहीं, जा शाउटिंग, तो तू रोता था बुलाता था, मैं बचपन में दौड़कर आती थी, खाना छोड़कर आती थी, अपना आराम छोड़कर आती थी, जब तेरे थोड़े से बिस्तर पर रोने की आवाज होती थी तो मेरी नींद उड़ जाती थी, मुझे डर लगता था कि तेरे अबू ना उठ जाए कि ऑफिस सुबह उनको जाना है, और आज मुझे कहता है कि व्हाई आर यू शाउटिंग यू ऑल वुमेन। देख नहीं रही थी मैं क्या कर रहा, क्या कर रहे थे? तो ये आज हमारा कल्चर है, मां बुलाती है जवाब नहीं देते, बाप बुलाते हैं जवाब नहीं देते, अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। मां कहती है मुझे कहीं लेके जाओ, मां सॉरी बहुत बिजी लाइफ है, अम्मी बहुत बिजी लाइफ है, आपको नहीं पता आपके टाइम में वो बिजी नहीं था, अम्मी के टाइम में ज्यादा बिजी था, आपके टाइम में तो मशीन भी है, आपके टाइम में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी भी है, आपके टाइम में तो बहुत कुछ है। अम्मी उसको धुआं फूके मार मार कर चूल्हा जलाती थी, आपको तो ये भी नहीं करना पड़ता। वो टाइम उस टाइम में बहुत फर्क है, आज इजी है, कल बहुत बिजी था, आज हमने खुद अपने आप को इतना बिजी खुद ही किया हुआ है। तो उस वक्त सबके पास टाइम कैसे निकलता था? अच्छा फिर प्रॉब्लम ये है कि ये डर भी नहीं लगता कि जो मैं कुछ कर रहा हूं अपने वालिदैन के साथ कल मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि टाइम तो बदल रहा है ना। आप जब आप कह सकते हैं कि आज आपके पास टाइम नहीं है तो कैन यू इमेजिन कि कल आपके बच्चे आपको क्या कहेंगे? कितना हम रिस्क खेल रहे हैं। एक वालिद साहब बड़े बुजुर्ग और बीमार और नाबीना भी हो गए थे, तो घर में वो प्रॉब्लम था बच्चे को, कह यार ये वालिद बूढ़ा और ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि उमूमन ये है कि जब तक बाप कमाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक एटीएम मशीन, और जब बाप कमाता नहीं है ना तो बड़ा मतलब कि वो मजा नहीं आता बाप के साथ ना। तो वो वालिद साहब के साथ इतना ज्यादा अच्छा सुलूक नहीं करता था बेटा। अच्छा जो बहू थी उसको भी बूढ़ा सुसर समझ में नहीं आता था, वो पीछे पड़ी रहती थी कि किसी सूरत अपने बूढ़े बाप को निकाल, बूढ़े बाप को निकाल। बूढ़े बाप ज़ईफ था, अंधा था, नाबीना था, कहाँ निकाले। तो वो भी कोशिश करता था किसी सूरत बूढ़ा बाप घर से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। बाप बूढ़ा घर से कैसे निकले, कहाँ जाएगा। एक दिन सर्दी की रात में बेटे ने बड़ा जोर दिया और यूं था कि बाप को कहीं ले जाए ना, छोड़ कर आ जाए। अच्छा उसका जो पोता था ग्रैंड सन, वो बड़ा मोहब्बत करता था दादा से, वो बाप को समझाता था, लेकिन वालिद साहब की समझ में आता नहीं था। वो पीछे पड़ा हुआ था कि बूढ़े को कैसे घर से निकालो, तो बूढ़ा मां दादा उसको बोझ लगता था, वजन लगता था। एक दिन वो छोड़ आया अपने बाप को बाहर, वो कहीं बिठा कर आ गया सर्दी में। अच्छा ग्रांड सन उसके साथ ही, उसका पोता बोलेंगे, तो पोता बोला मैं भी दादा के साथ। तो उसकी उस सर्द की रात थी ना, ठंड थी, उसको सर्दी लगी पोते को, तो वो घर गया और कहा कि अब्बा चादर तो दो, दादा क्या ओढ़ेगा। तो पुरानी सी मेली सी फटी फुटी सी चादर बाप ने दे दी पोते को, जाओ ओढ़ा दो। उसने कहा नहीं, हाफ करो उसको। बोला हाफ क्यों करो। बोला हाफ करो, आधी तुम रखो। Why? बोला आज मेरा दादा बूढ़ा हुआ है, तुम उसको ये चादर दे रहे हो, जब तुम बूढ़े होगे ना तुम्हें मैं बाहर निकाल कर आधी तुमको दूंगा। यानी ये बात इतनी इतनी कॉमन है, इतनी कॉमन है, जिसको हमारे उर्दू में कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा ये इतनी कॉमन बात है, जैसा करोगे वैसा भरो, मगर करते वक्त सोचते नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, ना माँ के साथ, ना बाप के साथ, ना किसी और के साथ, कि मेरे साथ क्या होगा। इतना हम लोग माँ बाप के लिए, हमारे पास स्पेस ही नहीं है, टाइम ही नहीं है वालिदैन के लिए। अगर हम अपने आप को दुरुस्त करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप की कोई, यानी मैंने देखा है कई लोग परेशान होते हैं, आप में से कई नौजवान होते हैं, बल्कि नौजवान नहीं, कई बाप वालिद होते हैं जिनके अपने वालिद से वालिदैन जिंदा होते हैं, आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी अपनी औलाद होगी उनके वालिदैन भी जिंदा होंगे, अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सलामत रखे। तो वो मतलब के परेशान होते हैं ना, कभी घर की परेशानी, मैं आपको बहुत रियलिटी बता रहा हूं, कभी घर की परेशानी, कभी कारोबार की परेशानी, और कोई इश्यूज आ जाते हैं, फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, बच्चों के इश्यूज आ जाते हैं, माँ बाप के सामने वो इजहार ही नहीं करता, बल्कि अपनी वो जो इसका जो परेशानी वाला जो मामला है वो अपने माँ बाप के सामने अपना मूड ऑफ लेकर आएगा। वालिदैन कहेंगे बेटा क्या हुआ, नहीं आपको नहीं समझ आएगी, अरे समझ नहीं है कि तुम्हें बड़ा किया, तुम बाप के बाप, तुम बेटे, तुम्हारी औलाद होगा, तुम्हारे माँ बाप की समझ नहीं आएगी, नहीं आपको समझ नहीं आएगी। प्लीज 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 लीव मी अलोन, चाहो ना भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा बहुत परेशान हूँ, कारोबार की परेशानियां, घर की परेशानियां, कर्जे की परेशानियां, बीमारी की परेशानियां, कोई प्रॉब्लम आ गई यहाँ, कोई डिजीज आ गई यहाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको। अगर इतने प्रॉब्लम है तो खुश नसीब हो तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में, खुश नसीब हो तुम्हारे वालिद आपके घर में। जब इतने प्रॉब्लम है तो इन्हें इग्नोर करने के बजाय इनके कदमों में बैठ के कहो ना अम्मी जान दुआ करो, माँ दुआ करेगी अल्लाह ताला पहाड़ पटा देगा, माँ दुआ करेगी अल्लाह ताला परेशानी दूर फरमा देगा। दुआ हमेशा कबूल होती है, उनमें से एक बाप है कि जब अपनी औलाद के लिए बेटे के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला बाप की दुआ बेटे के हक में कबूल फरमाता है। माँ के कदमों में सर रखो ना, बाप का हाथ पकड़ कर रोना, अब दुआ कर दो।
मैं अपनी पैसा नहीं दे सकते ना दे, ये सोर्स नहीं लगा सकते ना लगाए, अरे इनकी बात वहां चलेगी जहां का तस्वर भी नहीं कर सकते आप। ये आपके मेरे रब की बारगाह में कहेंगे मौला मेरा बेटा तकलीफ में, इसके लिए आसानियां पैदा कर दे। करना क्या है बाबा, सिर्फ जुबान ही चलानी है, हाथ उठाने और कह दे रहा है कि या अल्लाह मेरे बच्चे पर करम कर दे, या अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम कर दे, इसकी मुश्किल आसान फरमा दे, इसकी बीमारी दूर फरमा दे, इसके कर्जे उतर जाए, अल्लाह पाक की रहमत जोश में आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, लम्हों में काम बदलते आप नजर आएंगे। यहां मुंह चढ़ाकर बैठे हुए ओ आपको नहीं समझ आएगी, बहुत प्रॉब्लम है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है भाई। दुआ तो तकदीर को बदल देती है, और माँ बाप की दुआ, इनकी दुआएं नहीं थी। ये जो भी हमारा जो स्पेशली जो यंगस्टर, मैं तो हर उम्र वाले को कहता हूं कि जो भी परेशानी है, मैं कहता हूं परेशानी के लिए आप वालिदैन के, हम जाते रहे बुजुर्गों के पास में कि नहीं जाते, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जाते हैं इस उम्मीद पर कि ये दुआ करेंगे अल्लाह दुआ कबूल फरमा देगा, या जिसके पास पैसा है हमें लगता है ये पैसा देगा तो परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे घर में तो मां है यार, मेरे घर में तो वालिद है यार, मुझे गम किस चीज का, मुझे परेशानी किस चीज की, मेरे घर में तो दुआ का दरवाजा मेरे घर के अंदर मौजूद है। यानी जिनके माँ बाप चले जाते हैं ना उनके लिए ये होता है, वो हमेशा आपने सुना होगा, आप क्या पता नहीं ये कहते नहीं कहते, अपने मूल पाकिस्तान में दीगर सब उनको कहते जब माँ बाप चले जाते तो कहते यार दुआ का दरवाजा बंद हो गया, कभी सुना है? अरे जब ये दरवाजा खुला था तो कितनी बार दस्तक दी दरवाजे पर, आज कह रहे दुआ का दरवाजा बंद हो गया। बेरोजगारी होती है, परेशानी होती है, और एग्जामिनेशन इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैं आज तमाम इस्लामी भाइयों को इस्लामी बहनों को दावत देता हूं, बल्कि मैं मशवरा दे रहा हूं, अगर अल्लाह की रहमत आपके माँ बाप जिंदा हैं, आप परेशान ना हुआ करें, सीधे माँ बाप के पास जाएं, कम भी दुआ कर दो, अबू दुआ कर दो। तो अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप से मोहब्बत करने की, इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। एक शख्स ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भलाई का ज्यादा हकदार कौन है? इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ। उससे दोबारा अर्ज की इसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। तीसरी बार अर्ज की इसके बाद कौन? इस मर्तबा भी यही इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ। इसने फिर अर्ज की इसके बाद कौन है? फरमाया तुम्हारे वालिद। फिर इस करीबी का ज्यादा हक है, फिर जो इसके बाद, यानी फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, ब्लड रिलेशन को कहते हैं, वो फिर उस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई। एक और हदीस पाक में आता है कि वालिद की इताअत अल्लाह की इताअत है, और वालिद की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी। हदीस में वालिद जन्नत के दरवाजों में से दरमियाना दरवाजा है, मिडल डोर, चाहे तो इसे जाया कर दो और चाहे तो इसकी हिफाजत कर दो। बाप के नाफरमान के मुतालिक किए गए एक सवाल के जवाब में मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बार और कहार की नाफरमानी है, बाप की नाराजी अल्लाह जब्बार और कहार की नाराजी है। आदमी माँ बाप को राजी करे तो वो इसके जन्नत है, और नाराज करे तो वही उसके दोज़ख है। तो अल्लाह पाक आपको और मुझे वालिदैन के साथ उसने सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए, और माँ बाप की नाफरमानी से अल्लाह पाक हमारी, हम सब की हिफाजत फरमाए। दौर बहुत नाजुक है, स्पेशली वालिदैन के ताल्लुक से बहुत नाजुक दौर है। हमारे यहाँ माँ बाप को बहुत इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि हमें यही प्रॉब्लम है, हमारे बुजुर्गों को भी इस पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हमारी नस्लों को क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या, दूसरा है कि यार ये बात नहीं मानते, घर में प्रॉब्लम है। अच्छा, इनका प्रॉब्लम माँ बाप को भी उस पर समझ में आते जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, और जब आपको लगता है कि मेरी बात नहीं मान रहा, अब आपको लगता है कि ये नशा करेगा, आपको लगता है कि शराब पिएगा, आपको लगता है कि ये पढ़ाई नहीं करेगा, आपको लगता है कि इसके दोस्त ऐसे हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, घर में लेट आता है, बेटी लेट आती है, वो गर्लफ्रेंड में चला गया, वो बॉयफ्रेंड में चली गई। अब ये जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो भी हमें लगता है कि अब हमारे बच्चों का क्या बनेगा, जबकि माजरत के साथ वेरी सॉरी टू से ये रास्ते बचपन में ही हम ही ने उसको दिखाए थे, राइट? ये हम ही ने उसको रास्ते दिखाए थे, ये इन्हीं रास्तों पर चल के ही बड़ा हुआ है।
और हमें उस वक्त नहीं समझ पड़ी थी। जब हम समझते थे कि यार फलां का बच्चा यूं हो गया, फलां का बच्चा यूं हो गया, तो आपका बच्चा यूं नहीं होगा, वो भी तो उसी रास्ते पे चल रहा है। तो एक तो बड़ा प्रॉब्लम हमारा भी है कि हम खुद ही उस वक्त जब हमें समझ जाना चाहिए हम समझ नहीं पा रहे, और हम अपने बच्चों को रास्ते पे चला देते हैं, जिस रास्ते पे चल के बच्चा फिर ऐसा ही बनता है जैसा कि हम देख रहे होते हैं। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सबसे पहले अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फैसला करें, जैसा बीज बोएंगे वैसे फसल आएगी। सबसे पहले अपने बच्चों के लिए अच्छा फैसला करें कि हमारे बच्चे कहाँ बड़े होंगे, कैसे बड़े होंगे, किस माहौल में बड़े होंगे, इनका एनवायरमेंट क्या होगा, उनका उठना बैठना किन के साथ होगा। आप लाख अपने बच्चों को समझें, लेकिन उसका 10 20 का 15 10 6 का कल फ्रेंड सर्कल है, वो उन अपने फ्रेंड्स को देख देख कर ही वो अपना माइंड बनाएगा, आपको देख के शायद वो माइंड नहीं बना सकेगा। तो आप सबसे पहले ये फैसला करें, और वो फैसला लेट नहीं करना होता, वो बहुत टाइम पर करना होता है कि आपके बच्चों की परवरिश कहाँ होगी, आपके बच्चे कहाँ पलेंगे बढ़ेंगे, इनका फ्रेंड सर्कल क्या होगा, इनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होगा, आप इनको कैसा कल्चर देना चाहते हैं। आप बोलो मेरे घर में मैंने माहौल ऐसा नहीं रखा था, आपके घर में बच्चा था कितना, आपका बच्चा तो तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तो बाहर रहा है, घर में आया है तो घर में तो 1.5-2-3 घंटे ही मुश्किल से वो जागा है, इसके बाद तो सोया है वो, राइट। तो 2-3 घंटे में आप अपने घर के कल्चर की क्यों दुआई दे रहे हैं कि मेरे घर का कल्चर ऐसा है, मेरे घर का कल्चर ऐसा है, हमारे में तो यूं भी नहीं होता तो हम तो गाली भी नहीं देते, हमारे घर में तो सारे नमाजें पढ़ते हैं, हमारे घर में सारा ऐसा होता है, हमारे घर में तो सब यूं हो रहा होता है, मगर पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्या नहीं होगा, आपको पता कैसे नहीं क्या हो गया, आपका बच्चा टोटल आप टाइम ले लें 12 घंटे 13 घंटे 10 घंटे आपका बच्चा किस माहौल में पला बढ़ा है। तो डेफिनेटली वहां की जो भी एक सोच थी, वो जो थॉट उसके अंदर आती गई, वो स्टेब्लिश होती गई ना, अब होने के बाद आखिरकार यही होना तो है जो हो रहा है, कोई नई चीज नहीं हो रही है, ये मैं आपको बता दूं। और जो आज भी इसी पर कायम है और सोच रहे हैं कि जो हो रहा है हमारे मुख्तलिफ होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये दीवार इस पर काला कलर करेंगे तो काला ही नजर आएगा, अब कलर काला करे बोले नहीं ये दिन सफेद हो जाएगा, आपकी मर्जी, आप बोलते हो सफेद हो जाएगा, कौन आपको मना कर सकता है। आप इसको ब्लू कलर करेंगे बोलेंगे ये ब्लू कलर कर रहा हूं ये एक दिन व्हाइट हो जाएगा, मर्जी आपकी, आपको कौन मना कर सकता है, भाई आपकी जबान है व्हाइट बोलते रहो, लेकिन जैसा कर रहे ना वैसा होगा। ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, यूके का प्रॉब्लम नहीं है, वेस्टर्न कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में भी यही मसला है, दुनिया भर का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रियलिटी, एक नेचर है, ये एक नेचर, ऐसा तो नहीं है नेचर यहाँ कुछ और है या कहीं और कुछ और है। जैसी बच्चों की परवरिश का अंदाज रखेंगे, इनकी जिस अंदाज में ग्रोथ होती चली जाएगी, डेफिनेटली ये उसी तरह का मतलब तो होता चला जाएगा ना। ये तो बीज है, आप बीज बोएंगे, जैसा पौधा होगा वैसा ही दरख्त बनेगा, फिर वैसा ही फल देगा, चेंज कैसे आएगा ये। तो ये पेरेंट्स की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के ताल्लुक से सोचिए। आप यहाँ बीवी हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, आप बैठकर फैसला करें, अभी आपका बच्चा 1.5 साल का 2 साल का 3 साल का होगा, जिनके घरों में इस तरह के बच्चे हैं, ये बेसिकली मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ कि ये क्या करें हम इसका, अगर हम इसको इसी तरफ लेकर चलेंगे जैसे कि सोसाइटी का एक चल रहा है रवाज, तो फिर ये सोसाइटी जैसे जा रही है वैसे चलता चला जाएगा। आप गाड़ी जिस ट्रैक पर जाएंगे गाड़ी उसी रूट पर जाते जाते वही मंजिल पर पहुंचेगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आप डाले इसको किसी और रूट पर वो पहुंचे किसी और मंजिल पर, ऐसा नहीं होता। और इतनी ये प्रैक्टिकल चीजें इतनी अब सामने हैं, इतनी मतलब इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं है, कितनी उंगलियां सोचे तो सही कितनी है, अरे इतनी जल्दी जवाब ना दे, थोड़ा सोच तो ले कितनी है, सारे के कितनी उंगली है, थोड़ा तो सोचो, हो सकता है 3 हो, मेबी 2 नहीं ना, कितना डायरेक्टली आप विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, विद इन अ सेकेंड आंसर करे कितनी उंगलियां हैं, 4 खत्म, यही इसका जवाब है। जो कर रहे हैं ना उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिस रूट पर बच्चा रखोगे वैसा बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या बड़ा चेंज लेकर आ जाएंगे। मैं जरा हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं हो, 10 घंटे कहीं और है भाई, फिर इसके बाद कहीं और है, तो कुछ अपने आप
से सिंसियर हो जाए। बच्चों को तो डेफिनेटली समझाया जाएगा कि भाई परवरिश जैसी भी हुई हो आपके अपने माँ बाप की इताअत करनी है, माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है, माँ बाप को खुश करना है। लेकिन एक बयान सुनने से सब कुछ चेंज नहीं हो जाता। अब बोले मैं लाता हूँ बिठाता हूँ, चले हफ्ते में एक दफा लेकर आए तो सही, कुछ तो चेंजेस लाने की कोशिश करें। चले हफ्ते में एक ही दफा भात पकड़ कर इज्तिमा में ले जाएं, महीने में तीन दिन मदनी काफिलों में ले जाएं, चले ये भी कोशिश तो करें जो प्रॉब्लम हो गए उसको दुरुस्त करने के लिए। लेकिन आइंदा जो हमारी नस्ल है कमिंग, जो अभी हमारे हाथ में हमारे बच्चे, वो भी बर्बाद ना हो उसके लिए तो कुछ सोचे। और जो थोड़े बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, इनको थोड़ा अपने साथ मूव कराएं, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में लेकर आएं, इनको नमाज की तरफ लेकर आएं। थोड़ा प्रॉब्लम करेगा बच्चा, नहीं 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 आएगा, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं डाली थी, इसकी हमने आदत ही नहीं डाली थी। अब हम कह रहे चलो तो सख्ती करेंगे, तो फिर सख्ती का नतीजा आपको पता है कि अच्छा तो निकलेगा नहीं। तो इंग्लिश में इजी रन इन द विन। तो इंशाल्लाह ताला चलते रहें, समझाते रहें, सख्ती ना करें, अमल करें, दुआ करें। अल्लाह ताला बाप की दुआ कबूल फरमाता है। माँ दुआ करें बेटी के लिए, बेटे के लिए, मायूस ना हो कि मेरे बच्चे बिगड़ गए सुधरेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। मायूस ना, कोई टर्निंग पॉइंट आता है जिंदगी में, कोई टर्निंग पॉइंट आता है बच्चों की जिंदगी में भी, कोई खुदा ना करते चोट लग जाती है, कोई ऐसा हो जाता है कोई ऐसा कि फिर वो समझ में आ जाती है कि यार मैं गलत कर रहा था, और फिर वो मतलब के रुजू कर लेता है। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें। आप अपने बच्चे को इस्लाम और दीन के अमल के दामन में डालते, इस्लाम उसको बचा लेगा, इस्लाम और दीन उसको बचाएगा, आपकी औलाद को, आपकी मेरी हम सबकी औलाद के बारे में। और फिर लुक आफ्टर करें। देखिए कभी घर में पौधा लगाया है, इसको पौधा लगा कर छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते, इसकी कितनी हिफाजत करते हैं, क्योंकि अभी ना ये पानी ले सकता है ना खुद को कोई और चीज सेव कर सकता है। आप जितना पौधे की हिफाजत करते हैं हर तरह से उसकी चीजों को देखते हैं, इसी तरह बच्चे की हिफाजत करते हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा अपना पानी खुद लेगा और अपना फल खुद देगा, फिर इंशाल्लाह के साय में रहकर आप मदीने की ठंडी ठंडी हवाओं के मजे लेते रहे। उसको आलिम बनाएं, उसको हाफिज बनाएं, उसको नेकी के रास्ते पर लाएं, उसको परहेजगारी के रास्ते पर लाएं, उसको मुबल्लिग के रास्ते पर लाएं। इसकी दुनिया की आमदनी, दुनिया का कमाना कहीं नहीं ज्यादा प्यारे सन भाई। हमारा खुद प्रॉब्लम ही यही है, इस वक्त पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये है। हमें लगता है कि बच्चा अगर दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ, मजहब की तरफ चला गया तो ये इसका गुजारा कैसे कमाएगा। कहते अरे भाई मुझे दुनिया का बता तो सही ना, कितने ऐसे मजहबी स्कॉलर है, कितने ऐसे मुबल्लिग है, कैसे उलमा है जिनके लिए खाने पीने के मसाइल है। ये इनकी बेरोजगारी तो आपको मिलेगी कोई नहीं, ये सारे तकरीबन बेरोजगार तो वो है जिस फील्ड के नहीं है। जितने कम होते जिस फील्ड में जो दीन का काम कर रहे हैं आपको, अल्लाह ने कहा एक भी बेरोजगार नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला इनको बेहतर से बेहतर अता फरमाता है। और हकीकत यह है कि मुफ्ती अहमद यार का नहीं नहीं रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इतनी कमाल की बात लिखी है। आप लिखते हैं मुफ्ती अहमद यार का नहीं मिले रहमान, आप लिखते हैं कि ये जो नेमत है ना, तरह तरह की नेमत, खाने पीने के तालु से भी लिखते हैं तरह नेमत। मुफ्ती साहब लिखते हैं अल्लाह ताला ने तो ये तो पैदा ही अपने नेक बंदों के लिए की है। अल्लाह पाक ने ये चीजें तो पैदा ही अपने नेक बंदों के लिए की है, गुनाहगार तो इनके सदके में खाते हैं। ये कैसे हो सकता है यार, जो अल्लाह के दीन का काम करता है वो मतलब कि वो दर दर की ठोकरें खाएगा। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने फाइनेंशियली कह रहे, कोविड ने तो कईयों को उठाया नहीं उठाया, अभी नहीं उठे, हम लोग कहां से उठेंगे। एक बुजुर्ग अले रहमा की बारगाह में किसी ने आकर अर्ज की, हुजूर क्या बात है, हमारे दिल ऐसे सोए हुए उठते ही नहीं है। आपने फरमाया कि सोया हुआ होना तो ठोकर लगा के उठ जाए, लेकिन जब मर जाए ना तो कोई ठोकर उठा नहीं सकती। सोए हुए दिल उठते हैं, मरे हुए दिल कहां से उठेंगे। हमारे दिल सोए नहीं, हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। इतना दो ढाई साल कोविड रहा, कितना प्रॉब्लम रहा, आप मुझे बताए कितना प्रॉब्लम रहा। अब भी आंख नहीं खुली, ये तो आई ओपनिंग सेशन गुजरा है हमारा, दो साल का, ढाई साल का, तीन साल का। बाप वालिद की लाश घर में पड़ी है, बेटा हाथ लगाने को तैयार नहीं है। बेटे की लाश घर में पड़ी है, वालिद करीब जाने के लिए तैयार नहीं है। ब्लड रिलेशन दूर भाग रहे हैं, देखा नहीं देखा आप सबने। मैं कहता अगर इस टाइम भी किसी ने अगर हमारे डेड बॉडीज जो हमारी फैमिली के अंदर डेड बॉडीज थी जो ड्यू टू कोविड इनका जिनकी डेथ हुई है अगर इनको भी किसी ने गुस्सा कफन दिया है तो आपकी दावत इस्लामी के मुबल लिखते एक अंदाजा तो नहीं हो। अल्लाह का शुक्र है हुआ हो दावत इस्लामी ने ये एक जबरदस्त काम किया अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में किया है और वो काम किया है जिसका हम दावत इस्लामी का जितना शुक्रिया अदा करें इतना कम है। ये तो कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था करीब आने के लिए तैयार नहीं था। तो अल्लाह ताला की रहमत पर नजर रखे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारी औलाद अगर अल्लाह की राह में उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए रहेगी ये अल्लाह की रहमत से ये इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होगी आखिरत में भी कामयाब होगी और आपकी बनकर रहेगी इंशाअल्लाह आपकी बन जाए। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए तो खुद भी तीन तीन दिन के मदनी काफिलों में सफर करें एवरी मंथ 3 डेज और अपने जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने साथ लेके जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको फर्क मिलेगा। हर हफ्ते मदनी मुजाकरा होता है उसमें शिरकत करें अपने बच्चों को ले घर में सिर्फ मदनी चैनल चलाएं ओनली मदनी चैनल। आप चाहते हैं कि चेंजेस हो तो यही इसी तरह होगा घर में गले का प्रॉब्लम हो ठंडा पानी भी चल रहा है कोल्ड ड्रिंक भी चल रही है शुगर का पेशेंट हो तो मीठा मीठा भी चल रहा है तो फिर आप बोलोगे नहीं जनाब मीठा भी खाऊंगा शुगर से भी बचा लूंगा नहीं मतलब एक लॉजिकल डिस्कशन हम नहीं करते हम अपने नफ्स की मारे हुए लोग हैं। तो जो रियलिटी है जो हो सकता है और जिसकी वजह से सही चीजें हो सकती हैं प्यारे भाई उसकी तरफ आए। अल्लाह पाक हमें अपनी औलाद के लिए वो सोचने की तौफीक अता फरमाए जिस सोच से अल्लाह और उसका रसूल राजी होता है। आप और हमारे पास हमारी औलाद रब की नियमत है रब की अमानत है हमें इसके बारे में वो सोचना है जैसा अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म फरमाया है। हमारी थॉट तब्दील होनी चाहिए प्यारे स्वामी भाइयों हमसे कयामत के रोज हमारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा इनकी तालीम और तरबियत के ताल्लुक से जो हम पढ़ते हैं ना पूछा जाएगा तालीम और तरबियत दीन के ताल्लुक से है अखलाकियात के ताल्लुक से सुन्नतों के ताल्लुक से है इस्लामिक वैल्यूज के ताल्लुक से है। अपनी औलाद को हमें इस तरफ लाना पड़ेगा हमारी औलाद को देखकर कुरान पढ़ने नियत में प्रॉब्लम नहीं होता हमारी औलाद को नमाज पढ़ने नियत में प्रॉब्लम नहीं होता हमारी औलाद को तरह तरह के और बेअमलियों गुनाह में मुब्तला होती हमें प्रॉब्लम नहीं होता हमें प्रॉब्लम तब होता है जब हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है इससे रब की नाफरमानी की प्रॉब्लम सामने नहीं आया जबकि जब हमारी जैसी बात नहीं मानी उनको प्रॉब्लम सामने आ गए। तो शुरू से अगर हमने अपने बच्चों को दीन की तरफ डालना है और डालना ही है दीन की तरफ डालना है सुन्नतों की तरफ डालना दावत इस्लामी के हैंड ओवर कर दे यार इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। दुनिया भर के माँ बाप अपनी औलाद को उठाकर जाकर किस चीज के हवाले करते हैं आप अपनी औलाद को दावत इस्लामी को दो इंशाल्लाह ये आपकी औलाद को आपकी बनाकर वापस करेगी ये आप ही गिरेगी जिंदगी भर इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का खूब चर्चा करूं।